अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि इंसान ही तो इस्लाम में दाखिल होंगे। यानी मुफस्सिरून ने इसको कैसे बताया, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा है इस आयत में अन्नास का लफ्ज, जैसे कि अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि जो इस्लाम में दाखिल नहीं होगा असल में वो इंसान नहीं है, दे आर बंच ऑफ एनिमल्स। जो इस्लाम को अपने लिए सिलेक्ट नहीं करेगा एज अ दीन, एज अ गाइड, एज अ हिदायत, एज अ रिलीजन, असल में दे आर बंच ऑफ एनिमल्स। उलाइका क्या आता है कुरान में, उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, इवन दे आर वर्स देन एनिमल्स। ये है, यानी जिसमें थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी होगी, डोंट डोंट एवर थिंक कि वो इस्लाम में नहीं आएगा, दैट पर्सन विल कम टूवर्ड्स इस्लाम। अब आप इस बात को समझें, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने अंदर से इंसान की पावर को मजबूत से मजबूत करना है और हैवान की पावर को कम से कम करना है और खत्म करना है। सो जितना हम इस्लाम के करीब आएंगे उतनी हमारी ह्यूमैनिटी बढ़ती जाएगी, जितनी ह्यूमैनिटी बढ़ेगी उतनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, जितनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी हमारा अपने रब के साथ कनेक्शन बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। और अल्लाह ने वाजे कर दिया कि जिसमें थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी होगी वो इस्लाम का सोचेगा, इस्लाम पर अमल करेगा, इस्लाम के दायरे में आकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। सो अल्लाह ने एक तरह से अन्नास का लफ्ज लाकर हर तरह के इंसान को कॉम्प्लीमेंट किया है कि देखो तुम तो इंटेलेक्ट वाले हो, देखो तुम्हें इंसान बनाया है, यू आर नॉट अ हैवान, यू आर नॉट एन एनिमल, तो प्लीज जस्ट डोंट बिहेव लाइक एन एनिमल। इंसान अकल इस्तेमाल करके रब तक पहुंच जाता है। अ ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ अन्नास जो एक स्कॉलर ने की है, वो कहते हैं कि अन्नास कहकर अल्लाह ने बता दिया कि दीन में आने वाले जो भी होते हैं दीन उनको वेलकम करता है, टूटे फूटे गुनाहगार, गिरते पड़ते अमल करने वाले, रोते धोते अमल करने वाले, बट अल्लाह ने ये नहीं कहा मोमिनीन दाखिल हो रहे हैं, मोहसिनीन दाखिल हो रहे हैं, मुत्तकीन दाखिल हो रहे हैं, नहीं। अल्लाह ने क्या कहा, वराइतन नासा, अल्लाह ने सहाबा का भी जिक्र नहीं किया इस मुकाम पर, सोचे। हालांकि इस विक्ट्री को यहां तक लाने के लिए आपको याद है अल-फत्ह का एक मफहूम जो इंसान की एफर्ट के साथ मशरूत है, सहाबा का खून, सहाबा का पसीना इसमें शामिल था, लेकिन सहाबा को नहीं मेंशन किया गया। वराइत नास, ना मुहाजिरून, ना अंसार, ना मुहसिनीन, ना मुत्तकीन, अन्नास। एक स्कॉलर ने बहुत प्यारी बात लिखी, वो कहते हैं वराइत नास कहकर अल्लाह ताला ने उस वक्त पर भी सबको दावत दी और फ्यूचर के लिए दरवाजे खोल दिए। इसमें हिंट मौजूद है हर सुनने वाले इंसान के लिए कि देखो अल्लाह की रहमत का दामन बहुत वसी है। जब अल्लाह का बंदा सारी जिंदगी की डिसोबीडियंस एक तरफ कर देता है, चाहे उसने पूरी जिंदगी डिसोबीडियंस में गुजारी, चाहे पूरी जिंदगी कुफर में गुजारी, चाहे पूरी जिंदगी अल्लाह ना करे इस्लाम को या रसूल अल्लाह को अपोज किया, लेकिन जिस दिन उसने अपनी गलती मान ली, जिस दिन उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, जिस दिन उसने इस्लाम में दाखिल होने का फैसला कर लिया और वो दाखिल हो गया, अब उसकी पिछली स्लेट क्लीन। वराइतन्नासा यदखुलूना, इंसान को कॉम्प्लीमेंट किया गया है और ये अल्लाह का रहम है कि अल्लाह इंसान को कॉम्प्लीमेंट करता है। वराइतन्नासा यदखुलूना, अ ब्यूटिफुल अनदर वर्ड ऑफ यदखुलूना। यदखुलूना दाल खौ लाम दा खाला जो आता है वो इसका रूट वर्ड का पैटर्न आपको बताता है। दाखला का मतलब होता है किसी चीज में एंटर होना, किसी जगह पर दाखिल होना, किसी किसी रेफ्यूज में आना, किसी सेफ्टी में आना। स्कॉलर्स कहते हैं वराइतन्नासा क्या बता रहा है कि देखें इस्लाम में दाखिल होना इज जस्ट लाइक यू आर एंटरिंग इन अ वेरी प्रोटेक्टिव हाउस, इट्स जस्ट लाइक यू आर एंटरिंग इन अ होम। आप एक ऐसे घर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें अमन है, कंफर्ट है, रिफ्यूज है, सेफ्टी है, पीस है, मोहब्बत है, अता है। यदखुलूना, आप जब कलमा जुबान से बोलते हैं तो चाहे आप फिजिकली कहीं एंटर नहीं होते हैं कि अब मैंने कलमा पढ़ लिया तो अब शायद मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक मुल्क में ही रहना है, ورنہ میں مسلمان نہیں رہوں گی. نہیں, دس یدخلونا از سائیکولوجیکل. اور جو جو آپ کو سائیکولوجیکل پیس آپ کے فزیکل امپیکٹ کے ساتھ نظر آتا ہے, کبھی کبھی وہ آپ کے آس پاس ماحول کا پیس آپ کو وہ سکون نہیں دے رہا ہوتا. این ممکن ہے کہ آپ کے آس پاس بہت سکون ہو, سب چیزیں بڑی اسموتھلی چل رہی ہوں, لیکن انسان کے دماغ کی مشین جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہو, انسان کبھی سکون محسوس نہیں کرتا. بٹ اے بے چین انسان, اے بے چین ہیومینٹی, اے ڈپریسڈ انسان, اے اسٹریسفل انسان, اے انسان جس کو کوئی انگزائٹی, کوئی فوبیا, کوئی فیئر ہے, جس کو کسی قسم کا کوئی بائی پولر سنڈروم ہے, اے انسان, ورأيت الناس يدخلون, کم اینڈ انٹر ان دا ہاؤس آف اسلام سو دیٹ یو کین گیٹ پیس, کمفرٹ, ریفیوج, سیفٹی اینڈ محبت. یہ ہے اس کے اندر میننگ. قرآن میں آتا ہے نا یا ایوہ الناس, وہاں بھی الناس آتا ہے, یا ایوہ الناس ادخلوا فی السلم کافہ, وہاں بھی یہی ادخلونا سے لفظ آیا ہے, ادخلوا, یدخلون اور ادخلوا, یا ایوہ الناس ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے اسلام میں آ جاؤ, سو دیٹ یو کین انجوائے دا پیس, سو دیٹ یو کین انجوائے دا کمفرٹ, سو دیٹ یو کین انجوائے دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بیوٹیفل بیوٹیفل امپیکٹ کہ جو اسلام میں داخل ہوگا اس کو سکون مل جائے گا, چاہے اس کی پچھلی زندگی میں کتنی ہی بے چینیاں, کتنی ہی پریشانیاں, کتنے ہی گناہ کیوں نہیں تھے, اب اللہ اس کو راستہ بتائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں اس ریفیوج کو کیسے بڑھانا ہے. یہ ہے اس آیت کے اندر ورأيت الناس يدخلون کی خوبصورتی. Another beautiful point, scholars کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کے آؤٹ ورڈ کیفیت کو ڈسکرائب کیا ہے, ان کے دل کی کیفیت کو نہیں ڈسکرائب کیا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں یہاں یہ نہیں آیا کہ يدخلون فی دین اللہ افواجا بالایمان, وہ لوگ جو فوج در فوج اللہ کے دین میں آ رہے ہیں ایمان کے ساتھ, ان کے دل کی کیفیت کو یہاں بتایا ہی نہیں ہے. علماء کہتے ہیں جو اسلام قبول کر لے, اللہ کہہ رہا ہے بس سمجھیں اس نے قدم رکھ دیا پیسفل گھر کے اندر, جتنا وہ اپنا عمل اور ایمان بڑھاتا جائے گا اس کے گھر کا کمفرٹ اور پیس بڑھتا جائے گا. تو اسلام کو قبول کرنا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, بہت بڑی. مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے, مسلمان ریلیجن کے باکس میں لکھا ہونا بہت بڑی نعمت ہے, کلمہ گو ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اور ہماری نسلوں میں سے کبھی کوئی کلمہ گو ہونے کے باوجود اس کلمے کا اپوسٹیٹ ہو جائے, مرتد ہو جائے, اس کلمے کو چھوڑ دے. اللہ نہ کرے. اللہ ہم سب کا خاتمہ, ہماری موت اس کلمے کے اوپر آئے. اٹس اے ہیوج بلیسنگ. اندر پوائنٹ, آپ کے پاس آس پاس گھروں میں, آپ کے جان پہچان کے لوگوں میں, آپ کے ڈومیسٹک اسٹاف میں, آپ کے امپلائیز میں, جہاں نان مسلمز لوگ ہیں, پلیز گیو یور بیسٹ. دس از اے بیوٹیفل منتھ, دیز آر دا بیوٹیفل ڈیز, رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جنت سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, آخری عشرہ ہے. آپ اگر کسی ایک نان مسلم کو بھی جانتی ہیں, اینڈ اف یو آر لیونگ ان دا ورلڈ آف نان مسلمز, ان دا کنٹری آف نان مسلم, دین یور چانسز آر ماشاء اللہ سو مچ. اگر آپ میں سے کوئی کسی ایک نان مسلم کو بھی جانتا ہے, پلیز ایک دفعہ اس سے پیار محبت سے کہہ دیں, بہن کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ کہہ دو, دیکھو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو کیسے بہترین زندگی عطا کرے گا, سکون عطا کرے گا, اللہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دے گا. بس ایک دفعہ کسی کو اپنی اس رمضان کی آخری ساعتوں کے اندر, آخری دنوں کے اندر, کسی کو ایک مرتبہ اس اسلام کی دعوت دے دیں کہ ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب کوئی نان مسلم اسلام کے دائرے میں آتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے, اس کی یہ سلیٹ کلین ہو جاتی ہے, بالکل جیسے جب مسلمان حج کر کے آتے ہیں تو ان کے گناہوں کی سلیٹ کلین کر دی جاتی ہے, سوائے ایکسیپٹ ود اے بگ اسٹیرک, سوائے ان اعمال کے جس میں کسی انسان نے کسی انسان کا حق مارا ہوتا ہے, وہ گناہ رکھے رہتے ہیں نامہ اعمال میں, ڈونٹ فورگیٹ, بیکاز اللہ منصف ہے نا, اللہ انصاف کرنے والا ہے, اور اللہ کا انصاف یہ ہے کہ جب ہم نے کسی انسان کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اب اللہ اس انسان کو اس کا رائٹ دلائے گا. تو جتنے بھی حج کر لیں, اگر انسانوں کے حق مارے ہوئے ہیں تو آپ کی سلیٹ کلین نہیں ہوگی. پہلے انسانوں کے ساتھ جو جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو کمپنسیٹ کیجیے. تو یہاں ایک بہت خوبصورت اپروچ اسکالرز کہتے ہیں کہ آؤٹ ورڈ ایمان کو دیکھا گیا ہے کہ جتنے لوگ بھی, جتنے قبائل بھی اس وقت اسلام میں آ رہے تھے, جتنے بھی کنورٹ تھے, اس وقت یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ کون دل سے ایمان لا رہا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس میں جب انڈیویجولی لوگ ایمان لاتے تھے تو وہ کانسیکوینسز کو سوچ کر ایمان لاتے تھے. بائیکاٹ ہو جائے گا, پرسیکویشن ہوگا, ظلم ہوگا, مجھے نکال دیا جائے گا, مائیگریشن کرنی پڑے گی, غزوات پہ جانا پڑے گا, خون پسینہ بہانا پڑے گا, رسول اللہ کا ساتھ دینا پڑے گا, پتھر کھانے پڑیں گے. دیٹ واز دا سیناریو بیفور فتح مکہ. لیکن فتح مکہ کے بعد تو سیناریو بدل گیا, اب لوگ کنسیکوینسز کا نہیں سوچ رہے تھے. تو اللہ کی بھی شان دیکھیں, اللہ موقع دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے ہمیں معاف کر دے, اللہ چاہتا ہے ہمارے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے, اللہ چاہتا ہے ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے نوازے. کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنے بندوں کو موقع نہ دے؟ ہر دن ہمیں سورج نظر آتا ہے, ہر دن ہم سانس لیتے ہوئے اٹھتے ہیں, ہر دن ہمیں اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ ایک نیا دن نظر آتا ہے. یہ سب اللہ کی کانسٹنٹ عطا ہے. تو اللہ نے یہاں پر ان لوگوں کے بھی دلوں کو نہیں دیکھا کہ یہ کتنے استدلال کے ساتھ اسلام میں آ رہے ہیں, کیونکہ گروپس داخل ہو رہے تھے نا, اور جب گروپس داخل ہوتے تھے تو وہ کانسیکوینسز کا نہیں سوچتے تھے, بس قبیلہ آ رہا ہے تو سب آگے اسلام قبول کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر دل کی کیفیت کو نہیں, صرف آؤٹ ورڈ ایسپیکٹ کو دیکھا ہے کہ کیسے یہ اسلام میں آ رہے ہیں, اس کو ویلیو کیا جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ, یہ داخل ہو رہے ہیں, کس میں داخل ہو رہے ہیں؟ فی دین اللہ. دیکھیں پیچھے آیت ایک میں آیا تھا نصر اللہ, آپ کو بتایا تھا قرآن میں آتا ہے ناقۃ اللہ, قرآن میں آتا ہے نار اللہ, قرآن میں آتا ہے بیوت اللہ, مساجد کو کہا گیا ہے اللہ کے گھر. یہ جب آپ جب اللہ کے لفظ کے ساتھ ایسوسیشن آ جاتی ہے تو اب مراد کیا ہے کہ اب وہ لفظ سیکرڈ ہو گیا. نصر اللہ سیکرڈ, دین اللہ فی دین اللہ سیکرڈ. آٹومیٹیکلی جس چیز کے ساتھ اس طرح اللہ کا لفظ مضاف الیہ بن کر آ جاتا ہے, آٹومیٹیکلی گریٹنیس امپلائی کرتی ہے وہاں پہ. اللہ کا دین آلریڈی آنرڈ ہے, یاد رکھیں, فی دین اللہ. جو صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر بھی اس دین میں آ رہا ہے وہ بھی سن لے, جو دل سے کلمہ پڑھ کے آ رہا ہے وہ بھی سن لے, جو قربانیاں دے رہا ہے وہ بھی سن لے, اور جو اگنور کر رہا ہے وہ بھی سن لے. بہت غور سے سن لے, اللہ کا دین آلریڈی آنرڈ ہے اور اٹ ڈز ناٹ نیڈ اس ٹو آنر اٹ. یہ اللہ کا دین ہو یا اللہ کی ذات ہو, میری عبادت کی محتاج نہیں ہے, میری بندگی کی محتاج نہیں ہے. جیسے سورہ کافرون ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی سورت, وہاں آیت مکمل ہوتی ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. رسول اللہ سے کہلایا گیا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. تو یہ جو آپ نے کہا تھا وَلِيَ دِين, میرے لیے میرا دین ہے, کیا ہے رسول اللہ کا دین؟ رسول اللہ کا دین اللہ کا دین ہے, وہ جو یہاں سورۃ نصر میں آیا ہے, وہ جو سیکرڈ ہے, وہ جو گریٹ ہے, وہ جو بہترین ہے. تو یہاں جو فی دین اللہ آیا ہے وہ اسلام کی بات ہے. اسلام نہیں مینشن کیا گیا, فل اسلام نہیں کہا گیا, بلکہ اسلام کو دین اللہ کہا گیا ہے. یعنی اسلام کی فتح کیا ہے کہ انسان اس کو اپنے دل میں بسا لے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ فی دین اللہ افواجا, اگر کسی کو اللہ کے دین سے جڑنا ہے تو اس کو اسلام کو قبول کرنا ہوگا, اس کو اسلام کے دائرے میں آنا ہوگا. یہ بات یہاں مینشن کر دی گئی اور بہت خوبصورتی سے اس کو مینشن کر دیا گیا. اسکالرز کے مطابق دو ڈائمینشنز اس تصویر میں موجود ہیں, وَرَأَيْتَ النَّاسَ فی دین اللہ افواجا. دیکھیں یہ جو لوگ آ رہے تھے جن کو صرف کلمہ پڑھنا تھا, کیونکہ پورا قبیلہ کلمہ پڑھ رہا تھا, یہ جو لوگ آ رہے تھے, یہ جو اسلام کا حصہ بن رہے تھے, ان کا ایک پرسپیکٹو تھا حرم کے بارے میں, خانہ کعبہ کے بارے میں. اور وہ یہ تھا کہ حرم کو جس نے فتح کر لیا ڈیفینیٹلی وہ سچا ہے, اس لیے کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر قریش کے سامنے رسول اللہ حاوی آ گئے, رسول اللہ نے مکہ کانکر کر لیا, تو صرف اللہ مکہ کو کانکر کرنا الاؤ کرتا ہے, اور اللہ صرف اس کو کانکر کرنا مکہ الاؤ کرتا ہے جو سچا ہوتا ہے. اصحاب فیل کا حشر یہ سب لوگ قبائل دیکھ چکے تھے, تو اور اللہ نے भेज दिए थे उनके हाथियों की आर्मी को तबाह करने के लिए परिंदे। तो एक एंगल स्कॉलर्स कहते हैं जो लोग जोग दर जोग आए हैं, ग्रुप्स के ग्रुप्स आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मान गए थे। तो एक लेवल ऑफ ईमान इनके अंदर आ गया था, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा माना था। दूसरा स्कॉलर्स कहते हैं जो दूसरी डायमेंशन है कि बहुत से कबाइल का इस्लाम में दाखिल होने का लॉजिक ये था कि जो कुरैश जिससे मुकाबला नहीं कर सके, इसका मतलब है कि अब वो इंसान जो हैं या उसके फॉलोवर जो हैं वो बेहतरीन तरीके से मजबूत और ताकत रखने वाले इंसान है, तो जो इनके साथ जुड़ जाएगा उनको कांस्टेंट कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। सो दीज वर द थ्री रीजंस, टू रीजंस, टू डायमेंशंस, जिसकी वजह से कहते हैं स्कॉलर्स के लोग फौज दर फौज अफवाजन इस दीन में दाखिल होने लग गए। अफवाजन प्लोरल के तौर पर आता है फौज के, और ये एक्चुअली एक एक्सप्रेशन है एम्फेसिस करने का। और हम देखते हैं कि फतेह मक्का के बाद कितनी तेजी से इस्लाम फैला है। 8 हिजरी में फतेह मक्का हुई, 9 हिजरी आपको बताया था, अगला ही साल जो था वो पूरा आमुल वफूद का था, ईयर ऑफ डेलीगेशन था, पूरा साल लोग फौज दर फौज आते रहे और सूरह नसर की इस बात को सच साबित कर दिखाया कि लोग जो हैं वो इस दीन में फौज दर फौज दाखिल होंगे। रसूल अल्लाह ने इस मौके के बाद अपने सहाबा को मुख्तलिफ मुल्कों में भेज दिया था ताकि वो इस्लाम के बारे में जाकर लोगों को इन्वाइट करें, सो दैट पीपल शुड नो दैट हाउ शुड वी फॉलो आर दीन। इसलिए आप देखते हैं कि ये जो रसूल अल्लाह के ट्रेंड सहाबा थे, मेजॉरिटी आपके अपने तरबियत याफ्ता सहाबा, ये लोग अल्लाह के रसूल की ही इंस्ट्रक्शन पर मदीना से इस्लाम को आगे फैलाने के लिए बाहर निकले हैं, और ज्यादातर का इंतकाल मदीना से बाहर हुआ है, इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक मिशन पर भेजा हुआ था। ये है जिसको जिसकी आप जो आप एक्सप्लेनेशन इन डेप्थ स्टडी समझ सकती हैं आयत नंबर 2 की, वराअयत अन्नास फी दीनिल्लाहि अफवाजा। नाउ अ वेरी वेरी स्केरी एंड वेरी वेरी इंस्पिरेशनल हदीस जो इस आयत से कनेक्टेड है। इसी हदीस के ऊपर मैं अपनी बात को इंशाल्लाह मुकम्मल करूंगी, और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको हमेशा हमेशा विद इन द फोल्ड ऑफ इस्लाम रखे। अल्लाह हमें कलमे पर, कलमे के तकाजों पर जिंदा रखे। अल्लाह हमें कलमे पर मौत दे। अल्लाह इस कलमे की बेसिस पर अपनी रहमत की वजह से हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। सो नंबर 1 आपको पॉइंट जो यहाँ बताना मैं चाह रही हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तदरक हाकिम में हदीस आती है, सही हदीस है। आपने अपने सहाबा को एक मरतबा बताया था, जो नरेशन आती है उसका मफहूम है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह एक दिन रो रहे थे, तो किसी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात सुनी है, और ये वो वक्त था जाबिर बिन अब्दुल्लाह कॉन्कर कर रहे थे, तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह से जब पूछा गया तो इन्होंने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दखल अन्नास फी दीनिल्लाहि अफवाजन, लोग इस दीन में फौज के फौज दाखिल हुए, ग्रुप्स के ग्रुप्स की शक्ल में दाखिल हुए, वसयखरुजून मिनहु अफवाजन, और अनकरीब ग्रुप्स के ग्रुप्स ही इस दीन में से निकल जाएंगे। एक हदीस का एक और नरेशन का मफहूम अल्फाज आते हैं, दखल अन्नास फी दीनिल्लाहि अफवाजन लियुखरिजन मिनहु अफवाजन कमा दखलु फीही अफवाजन, जैसे लोग फौज दर फौज ग्रुप्स के ग्रुप्स इसमें दाखिल हुए, अनकरीब वो वक्त आएगा कि लोग मल्टीट्यूड्स में इस दीन को छोड़ेंगे, और मुर्तद मुसलमा कद्दाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही आ गया था, जिसने अपने पीछे बहुत से कलमा गो मुसलमानों को भटकाया था। यकीनन ये वो मुसलमान थे जो बगैर सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड फायदे देखकर इस्लाम में आए थे, इसलिए बगैर सोचे समझे मुसलमा कज़ाब की बातों में आकर ये दीन को छोड़ गए। आज इस हदीस के थ्रू ये बात समझना बहुत जरूरी है। याद रखें कई तालीमात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद हैं कि इंसान पढ़ता है तो खौफ आता है, लेकिन आज के दौर में ये अहदीस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे अल्लाह ने अपने रसूल को फतह दी और लोग ग्रुप्स के ग्रुप्स इस्लाम में दाखिल हुए, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्टीट्यूड्स में बढ़ना शुरू हो गई, आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम्स कई अहादीस मिलती हैं कि जब फितने बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और एंड ऑफ टाइम्स के फितनों में से एक बड़ा फितना एम्बिग्विटी, नथिंग इज क्लियर, हर चीज में इबहाम है, एवरीथिंग इज कंफ्यूज्ड, समझ नहीं आता किसकी बात को यकीन करें और किसकी बात को छोड़ दें. कॉन्स्टेंट कंफ्यूजन इज वन ऑफ द फितना ऑफ एंड ऑफ टाइम्स. तो जितनी आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये क्यों अल्लाह के रसूल ने कहा था कि वसा या खुरुजून मिनहु अफवाजा, अनकरीब वो फौजदर फौज इस इस्लाम में से निकलेंगे भी. तो आपको रसूल अल्लाह की तालीमात से एसेंस मिलता है कि जब फितने बहुत होंगे और दीन को थामने वाले लोग जो हैं, इवन जो कलमा गो भी होंगे, उनका ईमान बहुत कमजोर होगा, हार्डली अमल करने वाले होंगे, बेयर मिनिमम पर भी मुश्किल से होंगे, तो ऐसे वक्त में लोग फौज दर फौज इस्लाम से निकलेंगे. एथियस्ट, एग्नोस्टिक्स, जेंडर रोल्स पर कंफ्यूज, शरीयत को ब्लेम करने वाले, अपने माँ बाप के रोल्स और माँ बाप के मुकाम और माँ बाप के जो जिम्मेदारियां आती हैं औलाद की तरफ, उनको इग्नोर करने वाले, स्पाउसेस एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करने वाले, ये सब करके हम क्या करते हैं? हमें क्या लगता है हम सिर्फ एक इंसान के हक अदा नहीं कर रहे? इंसान का हक अदा ना करना इज द सेकेंडरी लेवल. जब एक रिश्ते में हम माँ बाप का हक अदा नहीं करते और माँ बाप औलाद का हक अदा नहीं करते, जब शौहर बीवी का हक नहीं अदा करता और जब बीवी शौहर का हक अदा नहीं करती और जब रिश्ते एक दूसरे का हक नहीं अदा करते, असल में वो अल्लाह की दी हुई शरीयत का हक नहीं अदा कर रहे होते. ये वो दौर होगा जिसमें अमल करने वाले मिनिमम होंगे, और जो अमल करने वाले होंगे वो बेयर मिनिमम पर अमल कर रहे होंगे. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दैट हदीस ऑफ सही मुस्लिम जो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी की गई है. आपने फरमाया बद अल इस्लाम गरीबन, इस्लाम एक स्ट्रेंज मजहब के तौर पर शुरू हुआ, यानी लोग उसको पहचानते नहीं थे. वसा याउदु कमा बद अ गरीबन, अन करीब वो वक्त आएगा ये फिर से लोगों की नजर में वियर्ड हो जाएगा, ये फिर से लोगों के लिए जो है वो डुएबल नहीं रहेगा, ये फिर से लोगों की नजर में स्ट्रेंजर हो जाएगा. स्ट्रेंजर कैसे होता है इस्लाम? जब इस्लाम कुछ और कह रहा हो और हमारी डे टू डे की मसरूफियात कुछ और कह रही हो, जब इस्लाम कारोबार करने के अलग तरीके बता रहा हो और हमारे कारोबार करने के तरीके बिल्कुल अलग हो, जब इस्लाम सेलिब्रेशंस के नाम पर कुछ और दे रहा हो और हम सेलिब्रेशंस के नाम पर सब कुछ अडॉप्ट कर रहे हो बगैर ये सोचे समझे कि इस्लाम ने सेलिब्रेशंस के लिए क्या ब्रैकेट दिया है, जब इस्लाम आपको और मुझे ड्रेस कोड कुछ और दे रहा हो और हम बगैर सोचे समझे अपनी पसंद के ड्रेस कोड्स अडॉप्ट कर रहे हो, जब इस्लाम घरों के अंदर किसी और प्रोटोकॉल को फॉलो करने का कह रहा हो और हमने अपने कल्चर के थ्रू अपने घरों के अंदर कुछ और ही प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको एम्बेडेड रखा हो. बादा अल इस्लाम गरीबन, इस्लाम स्ट्रेंजर के तौर पर शुरू हुआ था. वसा याउदु कमा बादा गरीबन, अन करीब ये फिर से स्ट्रेंज हो जाएगा. व फतूबू लिल गुराबा, खुशखबरी है स्ट्रेंजर्स के लिए. कौन से स्ट्रेंजर्स के लिए? जो माशरे में वियर्ड हो गए, जो खानदान में ऑड वन आउट हो गए, जिन्होंने इस्लाम को थामा, हक को थामा, सेलिब्रेशंस को पाक किया, जिन्होंने अन इस्लामिक रिचुअल्स को छोड़ दिया, इबादात को प्योर कर लिया, मसनून तरीकों पर आ गए, बेहतरीन तरीके से मुसलमानों वाला अदब अखलाक और तस्किया अडॉप्ट कर लिया, वो लोग इस दौर में भी जब लोग जौक दर जौक ग्रुप के ग्रुप इस्लाम से निकल रहे होंगे, ये लोग फतूबू लिल गुराबा, इन स्ट्रेंजर्स को रसूलुल्लाह ने खुशखबरी दी है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनन तिर्मिजी में आती है जिसमें आता है याति अलन्नासी जमान, एक वक्त और एक जमाना इंसान पर आने वाला है. कौन सा जमान? याति अलन्नासी जमान उस्साबिर, ऐसा जमाना आने वाला है इंसान के ऊपर. फीहिम अला दीनिही कलकाबिद अलल जुमर, जिस जमाने में दीन पर कायम रहना ऐसा होगा जैसे हाथ में बर्निंग एम्बर लेना, बर्निंग अंगारा ले लेना, बर्निंग कोल ले लेना. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वॉर्न करके गए हैं. तो ये आपकी हदीस इस आयत के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है. दखलन्नास फी दीनिल्लाहि अफवाजा वसयखरुजून मिन्हु अफवाजा, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इंसान इस हदीस को सुनता है. और आज हमारे लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. प्लीज मोहब्बतों के साथ अपनी औलादों को, अपने आने वाली नस्लों को अल्लाह की मोहब्बत दे दें. कन्विक्शन हैंडओवर करके जाएं, मोहब्बत हैंड ओवर करके जाएं, इताअत हैंड ओवर करके जाएं, जब दिल में उनके इस्लाम जगह बना लेगा, यकीन रखें कोई फितना, कोई आजमाइश, कोई टेम्पटेशन, कोई वसवसा उस दिल के अंदर से इस्लाम को नहीं निकाल सकेगा। सिर्फ रिचुअल्स नहीं सिखाएं, सिखाएं रिचुअल्स, सिखाएं वुजू का तरीका, सिखाएं नमाज, सिखाएं उनको कि आपने रोजा कैसे रखना है, मगर हमने इन्हीं चीजों को, रिचुअल्स को इतना दबा के पकड़ा है। वुजू की सुन्नतें ये हैं, वुजू के फराइज ये हैं, उस फिक में ये हैं, इस फिक में ये हैं, नमाज पढ़ने का तरीका इस फिक में ये है, नमाज पढ़ने का तरीका, दीज आर द रिचुअल्स, ऑब्लिगेशन अदा कीजिए, बेसिक तरीका किसी भी एक स्कूल ऑफ थॉट का अपनाइए और फिर आप उसको जहां बेहतरी का मौका मिलता रहे इल्म हासिल करने के बाद बेहतर करती जाइए। लेकिन प्लीज सिर्फ रिचुअल्स ट्रांसफर करके मत जाएं औलादों को, इस्लाम की मोहब्बत ट्रांसफर करके जाएं, बेटियों को बेटी और बेटा को बेटे को बेटा बना कर जाएं, मोहब्बतें और अखलाक सिखा कर जाएं। वरना याद रखें, सिर्फ रिचुअल्स दिए तो हमारी औलादें इस फितने के दौर में चंद सालों के बाद ना रिचुअल्स की परवाह करेंगी और ना इस्लाम की परवाह करेंगी। ये दीन ऐसे मत दें कि जैसे उनको विरासत का माल मिल जाता है, ऐसे तो रिचुअल्स मिलते हैं। जब दीन सिर्फ विरासत के माल की तरह मिलता है, मोहब्बत और फीलिंग्स और इमोशंस और कन्विक्शन के साथ नहीं मिलता है, तो बिल्कुल इसका वही हाल होता है जो विरासत के माल का होता है, जिसकी लोग कदर नहीं करते। जब दीन को विरासत के तौर पर सिर्फ रिचुअलिस्टिकली दिया जाए तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, शक आता है, और जहां शक आता है वहां से ये दीन रुखसत कर जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलादें दीन को थामे रहें, प्लीज प्लीज अगर हम चाहते हैं कि फितनों के टाइम में वो इस कैटेगरी में ना आए जिस कैटेगरी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वसयखरुजून मिनहु अफवाजा, खौफ आता है सुन के, जब हमारे बच्चे इस्लाम के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, खौफ आता है इस हदीस को देख के और अपनी यूथ को देखकर। ऐसी यूथ नहीं है कि सिर्फ सारी ऐसी है, बट मेजॉरिटी ऐसी है, मेजॉरिटी ऐसी हो गई है, बिकॉज हालात ने उनको ऐसा कर दिया है, रूटीन ने उनको ऐसा कर दिया है, हमारी चॉइसेस ने उनको ऐसा कर दिया है। नाउ वी हैव टू ब्रिंग देम बैक ऑन द मोहब्बा ऑफ इस्लाम, ऑन द मोहब्बा ऑफ अल्लाह, ऑन द मोहब्बा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिव द लव ऑफ इस्लाम टू योर चिल्ड्रन, ताकि हमारे जाने के बाद भी उनके दिलों के अंदर इस्लाम ऐसा रासिख हो, ऐसा इनग्रेन्ड हो कि उनकी जान चली जाए, उनका इस्लाम ना जाए। अल्लाह ताला हमें हमेशा इस इस्लाम के दायरे में बेहतरीन तरीके से अमल के साथ मौजूद रखे। अल्लाह खात्मा ईमान पर करे। अल्लाह ऐसे हाल में मौत दे कि जब हम अपने अंजाम से राजी हों और अल्लाह हम से राजी हो। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से रमज़ान के इन आखिरी दिनों में इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़ी रमदान ताअतल ख़ाशिईन वश्रह फ़ी रमदान सुदूरना बी इनाबतिल मुख्बितीन बी निया अमानल ख़ाइफीन सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।